नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन के अम्मान पहुंच गए हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री डॉक्टर जाफर हसन ने उनका औपचारिक स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए श्री जाफर हसन का आभार व्यक्त किया।
योर मैजेस्टी, मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूँ।
श्री मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जॉर्डन वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 37 वर्षों के अंतराल के बाद जॉर्डन के द्विपक्षीय दौरे पर हैं। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री तीन देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर हैं। राज्यसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत देश विकास की ओर अग्रसर है।
हमारा देश लोकतंत्र की जननी के रूप में पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनावी प्रक्रिया इस लोकतंत्र को निरंतर पुष्पित और पल्वित करती आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर सेक्टर में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलकर विकसित भारत के निर्माण की ओर तेजी से आगे भारत बढ़ रहा है।
श्री मेघवाल ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से फर्जी मतदाताओं को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के डॉक्टर एम थंबुदुरई ने कहा कि शुद्ध और सटीक मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत करती है और पारदर्शिता मतदाताओं को सशक्त बनाती है। लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थान बनने में सुविधा प्रदान करना है। लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को मंजूरी दे दी है। इसमें 1,32,000 करोड़ रुपए के कुल अतिरिक्त व्यय के लिए संसद की मंजूरी मांगी गई है। इसमें 41,455 करोड़ रुपए से अधिक के शुद्ध नकद व्यय के प्रस्ताव भी शामिल हैं। उर्वरक सब्सिडी पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय भी इसमें शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गाजियाबाद और नोएडा में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई गई कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्य योजनाओं के जमीनी स्तर पर कड़ाई से कार्यान्वयन का भी आह्वान किया। पेंशन प्रशासन प्रणाली रक्षा यानी स्पर्श पहल से नवंबर 2025 तक भारत और नेपाल में 31 लाख से अधिक रक्षा पेंशन भोगी जुड़े हैं। स्पर्श डिजिटल इंडिया की प्रमुख पहल है जो देश का पहला संपूर्ण डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। मंत्रालय ने कहा कि स्पर्श भारत की सबसे बड़ी एकीकृत पेंशन प्रणाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी के बदले नेटो में शामिल होने की यूक्रेन की कोशिश छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि श्री जेलेंस्की ने युद्ध समाप्ति पर अमेरिका के दूतों के साथ बातचीत में रूस के कब्जे वाला क्षेत्र सौंपने के अमेरिका के दबाव को खारिज कर दिया है। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर और सिमरनप्रीत कौर बरार ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दोनों खिलाड़ियों ने सीनियर और जूनियर स्पर्धाओं में पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।